राजा राम की कार उलंगी सीता लंक मंदारी। राजा राम की कार उलंगी सीता लंक मंदारी। सेतु बंदा जब सेना उतरी चढ़ के कदम अठारे। मन तू पाएगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। मन तू पाएगा अपना भोगेगा अपना। लंका तोड़ बलंका रे तोरी महारावण से मारे। लंका तोड़ बलंका रे तोरी महारावण से मारे। दस मस तक रावण के काटे विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोग। मन तू पावेगा अपना किया रे भोग। प्रह्लाद तेज परवान करी है दर नरसिंह अवतारे। प्रह्लाद तेज परवान करी है दर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे तेरना खुशी उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। हा हा हो बंदे होते दौलत है बलबारे। हा हा हो बंदे होते दौलत है बलबारे। गज और गराब ने बहसाकर दस सेंस अधकारे। मन तो पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। श्वास घटा बलहीन भया जब खेच लिया मजधारे। श्वास घटा बलहीन भया जब खेच लिया मजधारे। अर्ब नाम रसना से तेरा सुमरत है रंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोग। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। नर्द मुनि तेर काली योगी जिन मन गर्भ किया रे। नर्द मुनि तेर काली रे योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए रोक कैसे उपाड़े। मन तू पावेगा भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते छप्पन कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते छप्पन कोटि सिंगारे। अम्बरीश के चले अपुठेर दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे गएगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे लो। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को कोपीन गई थी वो बद के अंत अपारे। मन तू पावगा भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा विषम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बानो मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानो मारे। महाभारत में टटीर के राखे व घंटा टूट पड़ा रे। मन तो पावेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा 33 कोटि यज्ञ में आए वशेष 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए शेष 88 सारे। द्वादश कोटि वेद के वक्तवा शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा 33 कोटि यज्ञ में आए वशेष 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए शेष 88 सारे। द्वादश कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे। जो नहे के घर बालद आई वो केसो से बन जा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा मीरा बाई को मारण लागे जहर का प्याला प्यारे। मीरा बाई को मारण लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमर तो लाग्या ओ गया सरद ही आरे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा मन तू पावेगा अपना किया रे। कंस के सिचानो रेख पावन जीतन माल अखाड़े। कंस के सिचानो रेख पावन जीतन माल अखाड़े। दास गरीब करे को सरवर ऐसे शीश हमारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोग मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। सब साई परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहेब परमेश्वर के साक्षात दर्शन के उपरांत उन्हीं की कृपा से उन्हीं की रजा से अपनी अमृतवाणी में नाना प्रकार से व्याख्याएं की है प्रभु के पाने की। कैसे शुभ कर्म हमारे होने चाहिए और कौन से अशुभ कर्मों को हमने त्यागना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति मार्ग प्रशस्त हो और हम सफल हो सके। क्या बताते हैं कि मन चिन्हों अदर अधारे, मन तू पावगा अपना किया रे, भाई भोगेगा अपना किया रे। चिन्हों अदर अधारे, चिन्हों माने जानो, अधर अधारे यानी सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर की सतह पर जो परमात्मा रहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सुप्रीम जो परमात्मा है, सबसे सर्वशक्तिमान प्रभु है, उनको जानो। और यहां जितने भी साधनाएं तुम करते हो उनका भी पुण्य मिलता है, उनका भी लाभ मिलता है। जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्म, भगवान ब्रह्म, भगवान पर ब्रह्म आदि की जो पूजाएं करते हो, इससे भी लाभ मिलता है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। अब कोई भी साधना से कोई भी हम क्रिया करें, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत रह करके हमने उस कार्य को सफल करना होता है। यदि हम नियम तोड़ देते हैं और प्रयत्न ज्यादा करते हैं, परिश्रम भी ज्यादा करते हैं, वो व्यर्थ होता है। जैसे एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान में उसके नियम होते हैं, उस खेल के मैदान की एक बाउंड्री होती है, एक चारों तरफ से उसकी सीमा होती है, उस बाउंड्री और सीमा के अंतर्गत ही खिलाड़ियों को खेलना भी होता है और जो फाउल पॉइंट होते हैं उनसे सावधान भी होना होता है और विजयी भी होना होता है। इसी प्रकार परमात्मा के पाने का, सतभक्ति सफल करने का एक नियम है, एक संविधान है, उस संविधान के नियम, उनकी शाखाएं धाराएं वो आपको बताई जाती है सत्संग के अंदर, और उसके अंतर्गत आपने खेलना होता है। उससे फाउल हो जाने के बाद आपको फाउल माना जाएगा, आपका भक्ति मार्ग रुक जाएगा। अब जैसे बच्चा खेल के मैदान में ठीक खेला नहीं, वहां से निष्कासित हो गया, तो फिर वो बाहर खेल रहा है, कबड्डी कबड्डी करता हुआ अपने माने 10 किलो के अंदर से घूम रहा है, वो प्रयत्न भी ज्यादा करता नजर आ रहा है, परिश्रम भी ज्यादा नजर आ रहा है और दौड़ता भी खूब नजर आ रहा है, लेकिन उसकी वो क्रिया विफल है। उसने जहां खेलना था वहां से तो फाउल हो गया, और फिर बाहर कबड्डी कबड्डी करा, वो दुनिया को एक रिझा रहा है, वो अनजान है या नशे के अंदर है। ऐसे ही जब हम गुरु मर्यादा से गिर जाते हैं, बेशक से हम ज्यादा भक्ति भी करते नजर आवे, से हम ज्यादा कहीं दान पुण्य भी कर रहे होंगे, लेकिन वो व्यर्थ होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पूजा या साधना हम करते हैं वो विफल होती है। क्या बताते हैं, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अब हम परमात्मा हमें यही के उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि आप श्री राम श्री कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। श्री रामचंद्र जी ने श्री वशिष्ठ मुनि महाराज जी से दीक्षा ली थी, उपदेश लिया था, और श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने श्री दुर्वासा जी ऋषि से उपदेश लिया था, नाम लिया था, वो उनके गुरुदेव थे। भगवान श्री कृष्ण जी के आपने संदीपनी भी गुरुदेव सुने हैं, संदीपनी जी उनके अक्षर ज्ञान के गुरुदेव थे, और श्री दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक मार्ग के गुरुदेव थे। मर्यादा के अंदर रहते हुए जो दान किए जाते हैं उनका बहुत लाभ होता है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल, गुरुकुल और कुल गुरु एक ही चीज है। कुल गुरु, कुल गुरु वो होते थे जैसे एक खानदान के एक समूह के एक धार्मिक गुरु होते थे और उसी को गुरुकुल भी कह सकते हैं। गुरुकुल को फिर एक पाठशाला का रूप धारण कर लिया। गुरुकुल गुरुदेव जो मार्गदर्शन करता है एक समुदाय को, तो उस गुरुकुल के अंदर गुरु लोग हुआ करते थे और गुरु लोग जो है वो बचपन से ही बच्चे के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भर दिया करते थे, क्योंकि वो ऋषिजन परमात्मा के जानकार होते थे, संविधान से परिचित होते थे कि जैसा भी कोई कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ता है। और ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों के अंदर यही निर्णय दिया गया है, वेदों को अनजानपने से निष्कर्ष निकाला है इन्होंने। वैसे वेदों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कोई परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है और उसकी भक्ति करने से जीव के सब पाप भी विनाश हो जाते हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, फिर जन्म और मृत्यु उस प्राणी की कभी नहीं होती। लेकिन वेदों के निष्कर्ष निकालने वाले अपने ही एक दूसरे से भी आपे निष्कर्ष निकाल लिया इन्होंने। क्या निकाल लिया कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता है और ब्रह्म को सुप्रीम पावर बता दिया। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान नहीं है, पर ब्रह्म दूसरे नंबर का प्रभु है और पूर्ण ब्रह्म ये तीसरे नंबर का, अर्थात ये सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा है। तो जो गुरु लोग हुआ करते थे उन्होंने अपने हिसाब से जो भी वेदों में का निष्कर्ष निकाला, वेदों का जो निष्कर्ष निकाला कि जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे, यही पवित्र गीता जी का निर्णय इन्होंने निकाला। लेकिन गीता जी में ऐसा नहीं है। और इन्होंने निकाला क्या निष्कर्ष है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने ही पड़ते हैं और जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती, ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसा भी वेदों में नहीं है, ऐसा भी पवित्र गीता जी में नहीं है। हाँ, उसमें ज्ञान के हर स्थिति है। जैसे ब्रह्म अपना ज्ञान दे रहा है कि अर्जुन, पवित्र गीता जी में लिखा कि अर्जुन इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति से, न तो इन तीनों गुणों की भक्ति तो मूर्ख लोग करते हैं और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मेरी साधना भी नहीं करते। अपनी साधना को फिर बताते हुए कहते हैं कि मेरी साधना भी अनुतम है, उत्तम नहीं है। फिर बताया कि पांचवें अध्याय के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू ही जानता मैं जानता हूं। फिर पंद्रहवें अध्याय के पवित्र गीता जी के पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, वो तत्वदर्शी संत फिर आपको वास्तविकता बताएगा किस परमात्मा की कितनी स्थिति है, उसके आधार से फिर भक्ति करना, उसके उसके बाद उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए प्राणी फिर दोबारा जन्म मृत्यु में को प्राप्त नहीं होते। और फिर मैं भी उसी की पूजा करता हूं। गीता बोलने वाला ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं और फिर उसी की पूजा करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अपनी पूजा को अनुत्तम बताते हैं, उस परमात्मा की भक्ति से परम शांति और सदा के लिए मोक्ष का वो धाम बताया। वो परमात्मा कौन है उसके लिए लिखा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कि उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की तलाश कर और फिर जैसे वो मार्गदर्शन करें भाई वैसे कर लेना, नहीं तो मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, तेरी भी और मेरी भी। और यही गीता जी के यही पवित्र वेदों में वर्णन है। वो परमात्मा कोई और है, उसकी साधना को मैं नहीं जानता, वेद बोलने वाला प्रभु कहता है, वो तो कोई तत्वदर्शी संत आपको मार्गदर्शन करेगा। इस निष्कर्ष से उन्होंने क्या निकाला कि जैसे भी कर्म करेगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषियों ने ओम नाम की के जाप से बहुत साधनाएं की, हजारों वर्षों तक बैठे रहे, उनसे सिद्धियां आ गई, आकाश में उड़ जाना, जल पर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं। लेकिन जब कर्म का दंड उन ऋषियों पर भी आया, उनको भी भोगना पड़ा, इसलिए ऋषियों ने ये अपना निष्कर्ष निकाल दिया, अपनी सोच के उपनिष्ठ शास्त्र बना दिए कि किया हुआ कर्म तो प्राणी को भोगना ही पड़ता है। या परमात्मा भी इन्हीं तक के लेवल की ज्ञान में का वर्णन दे रहे हैं गरीबदास महाराज के, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। किस किस ने जैसे जैसे कर्म किए उनका फल उनको अवश्य मिला है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने के बाद फिर भी किया हुआ कर्म मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्मों का फल नहीं मिलेगा, वो पाप कर्मों को विनाश कर देता है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। आज प्रसंग चल रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर परमात्मा कहते हैं, देते को हर देत है, जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो, परमेश्वर सुने ना कान। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीरी, दान दिए धन घट नहीं, कह रहे साहेब कबीर। अब दान देने से धन नहीं कम होता, पर कैसे देने से? पूर्ण संत के शरण में आने के उपरांत और फिर मर्यादा वक्त में रहते हुए जो दान धर्म या सीमन सेवा की भजन किया जाता है, वो हमारा प्रफुल्लित होता है। अब एक तरफ तो प्रसंग उठता है कि भी दिया हुआ कह रहे हो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दूसरी तरफ कह रहे हो कि गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं, तो पूछो वेद पुराण। फिर वैसे जो हम कर रहे हैं कर्म, वो तो विफल भी बता रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं इनका फल अवश्य मिलेगा, ये दोगली बात कैसे हो सकती है? हाँ, इसी का नाम सत्संग होता है, तत्व ज्ञान होता है, जो निर्णायक ज्ञान हमें प्राप्त हो। आपने देखे होंगे कई कुत्ते जो हैं वो कारों में चलते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है, कुत्ता पिछली सीट पर बैठा होता है, और उस कुत्ते का अलग से एक कमरा होता है, उसमें कूलर लगा होता है, पंखा लगा होता है, और साथ में खाने पीने की व्यवस्था मेरे ख्याल आम व्यक्ति को, आम मनुष्य को उपलब्ध नहीं होती, जो कि उस कुत्ते को उपलब्ध है। और बढ़िया कमरे के अंदर व्यवस्था है, और मेडिकल फर्स्ट एड भी, मेडिकल फैसिलिटीज भी मेरे ख्याल में आम प्राणी को नहीं उपलब्ध, जो उस कुत्ते को होती है। ऐसा क्यों है? यही बात, यही ज्ञान सत्संग में क्लियर किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है कि जैसा भी कर्म आप करते हो सबका फल मिलता है। जैसे आप उठे, दो रोटी डाल दी कुत्ते को, आप उठे चिड़िया को ऊपर, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं आपने पानी डाल दिया, कहीं गए जाप जहां रस्ते में कोई भिखारी दिखा उसको 10 रुपए दे दिए, गंगा में जाकर भंडारे कर दिए, या कहीं भंडारा चल रहा उसका 20-30 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए दे दिए, इनका फल तो मिलेगा, पर ऐस जो जैसे मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिलेगा। अब जो कुत्ता है कार में घूम रहा है, पहले मनुष्य जन्म में उसने दान तो खूब किया, और उस दान का, उस धर्म का उसको प्रतिफल भी खूब मिला, लेकिन वो मर्यादा वत नहीं किया उस नादान ने, परम संत के माध्यम से विधिवत मर्यादा में रहकर नहीं किया। भंडारे भी लाए होंगे कि तो भंडारों में चल रहे, जैसे खाना कहीं चल रहा है, भंडारा हो रहा है, वहां जाके 1000-2000 रुपए दे दिए होंगे, कोई बोरी आटे की भी दे दी होगी, घी का पीपा भी दे दिया होगा, और पक्षियों को दाने भी डाले होंगे। अब उन सबका पुण्य तो मिल गया उसको, उस पुण्य का प्रतिफल तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म ना मिला। अगर वो नादान आत्मा पूर्ण संत के माध्यम से गुरु मर्यादा में रहते हुए और ये साधना ठीक करता, तो वो मनुष्य जन्म भी मिलता और वो सुविधा भी मिलती, जो गाड़ी भी मिलती, जो आज उसको कमरा भी मिला अलग से, वो कमरा भी मिलता, एसी भी मिलता और ड्राइवर भी मिलता, और हो सकता है उस नादान आत्मा को फिर कोई संत भी मिल जाता और वो अपना आगे का कल्याण भी करवा जाता। लेकिन अब क्या मिलेगा उसको, केवल किया हुआ फल वो खा पी कर, अब तो उस एसी रूम में और सारी सुविधाएं को उपलब्ध करता हुआ जीवन जी रहा है, इसमें अपने सारे भोग न भोग के और फिर बनेगा सुअर। अब सुअर में क्या फैसिलिटी होगी इसको, कुछ नहीं हो सकती। और फिर बनेगा गधा, वो 84 लाख के कुएं में गिर गया, अब रेट की तरह घूम घाम के फिर कभी मनुष्य रूप में लगा, फिर देखी जा क्या होगा। तो ये सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराने। फिर यहां बताते हैं, अब देखो गुरु तीन लोक के भी भगवानों के भी मार्गदर्शक संत हैं, उनके द्वारा भी किया हुआ जो पुण्य है, उन गुरुओं के माध्यम से भी जो दान और पुण्य सिमरण करते हैं, उनका भी फल ज्योंका त्यों मिलेगा। उसमें भी जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल जाए आपको आगे, नहीं, उसमें जैसा भी आपने दान किया है उसका फल अवश्य मिल जाएगा। लेकिन सभी कर्म भोगने होंगे, पुण्य भी और पाप भी। केवल पूर्ण परमात्मा के परम संत जो समय अनुसार सदियों के उपरांत एक ही होता है, उनके माध्यम से किया हुआ पुण्य दान भजन जैसे वो बताए, ऐसे उस वास्तविक मंत्र की साधना से आपको पुण्यों का लाभ मिलेगा, पाप आपके विनाश हो जाएंगे। और अच्छी साधना और लगन सत भक्ति परमात्मा पाने की आप में तड़प हो गई तो आपकी यहां से पूर्ण रूप से मुक्ति भी हो जाएगी। नहीं तो मनुष्य जीवन ही सीधा होगा, इसमें कोई शंका नहीं। आप मर्यादावत लगे रहना, और एक नहीं, इस सत साधना का जिसने 2-4 वर्ष भी साधना कर ली, मनमाना 100 मनुष्य जीवन आपके लगातार हो जाएंगे। लेकिन ये भी पेंडिंग काम रह जाएगा, ये भी लंबी बात बढ़ेगी। अब मान लीजिए हमारे 100 मनुष्य जीवन भी हो गए और 100 मनुष्य जीवनों में कोई संत हमारे को मिला नहीं पूर्ण, वो 100 जीवन भी खत्म हो जाएंगे और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में हम आ जाएंगे। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत गहराई से विचार करना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान हमें मिला नहीं था। अभी तक हमने लोकवेद सुना था अपन को, लोकवेद होता है सुना सुना ज्ञान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर अविनाशी, कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर, लेकिन ये लोकवेद था, ये वास्तविक ज्ञान नहीं था। क्योंकि इनकी हिस्ट्री शीट, इन भगवानों के जीवन चरित्र बता रहे हैं कि नाशवान है, इनके माता पिता है, और एक ब्रह्मा मरता है, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक श्री विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 श्री विष्णु की मृत्यु के बाद एक भगवान शिव की मृत्यु होती है, ये नाशवान है। परमात्मा कहते हैं एक ती बुलंद उम्र मरेगा अंतरे, क्योंकि वह सतगुरु में लगे न कान न बैठे संतरे। क्या बताया है कि अभी तक हमने लोकवेद सुना था, लोकवेद। अब क्या है, जैसे जितने भी आज भक्त आत्मा कोई अच्छा उच्च अधिकारी बने हुए हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, ये पिछले जन्म की मलाई खा रहे हैं, ये पिछले जन्म पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्य इन्हें प्राप्त हैं, और ये आज उनको मिले हुए हैं, और वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो साधना हम वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे वो किसी मजहब में पुण्यात्मा का जन्म है, उसमें कोई ना कोई धार्मिकता का सहारा लिया हुआ है, तो वो ये सोच रहे हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमें लाभ दे रही है। नहीं, वो तो आपकी पिछली पुराने पिछले जन्म का जो संस्कार प्रारब्ध है वो चल रहा है, और जब तक सही साधना नहीं मिलेगी, उस पहले वाली साधना से आपको सुख है तो सुख होता रहेगा,
और जब कष्ट आएगा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। ये तो वेद में लिखा है कि जैसे एक बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में लिखा है कि जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु में ना गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है। उस बसंत ऋतु में चाहे इंसान बाहर सोवे चाहे कहीं बैठा रहे, बिल्कुल जंगल में मैदान में, और वहीं सोए वहीं घूमता फिरता रहे, उसी में अपना ठाठ करे। जो सोचे दूसरा कोई मकान बना रहा है उसको कहे भी तू मकान बना ले, तो वो सोचे कि क्या फायदा मकान बनाने में, मुझे तो मौज हो रही है, कोई दिक्कत आ नहीं रही, क्योंकि अभी वो बसंत ऋतु चल रही थी। और फिर आएगी गर्मी या अचानक आगी आंधी, ऊपर तो पड़े ओले, ओले गिरे और साथ में वर्षा जोर की आ जाए, फिर पता लगेगा उस भाई ने कि क्या आवश्यकता थी मकान की। अब हमारे जो शुभ कर्म चल रहे हैं जिन पुण्यात्माओं के, उन्होंने कोई आवश्यकता भगवान की महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उनके जीवन की उस शुभ कर्मों रूपी वह बसंत ऋतु चल रही है। और जब ये दुख रूपी ग्रीष्म ऋतु आएगी और वो ओले गिरेंगे और शीत आएगी, वो शीत लहर चलेगी, तब पता चलेगा मकान बनाने से और ये सर्दी और गर्मी के प्रबंध करना क्यों आवश्यक था। उस समय फिर कुछ बने नहीं, फिर तो वो पहाड़ टूट ही जाएगा। इसलिए जब तक हमारे पुण्य चल रहे हैं तब तक तो इंसान न सोचे भाई क्या फर्क पड़ता है, करते तो हम भक्ति हम जैसा कर रहे हैं, लेकिन जैसी भक्ति हम कर रहे हैं ये कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है, क्योंकि अपनी पवित्र शास्त्र इसका संकेत नहीं कर रहे। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र नंबर 23 24 में लिखा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख हो ना उनकी गति हो और ना ही उनको कोई कार्य सिद्ध हो, अर्थात यूजलेस, बिल्कुल व्यर्थ। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो भक्ति मार्ग के कर्म करने चाहिए और ना करने चाहिए उनके लिए शास्त्र प्रमाण है, अन्य की बात मत मानना। अब आपने सुना होगा कि द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था और उसको भगवान ने बढ़ा दिया था, अब ये कुछ ऐसी स्थिति आ गई। अब जो वर्तमान में ज्ञान चल रहा है, वर्तमान में जो दंत कथा लोकवेद हमने सुनने को मिल रहा है, अब जैसे सत्यार प्रकाश नामक एक शास्त्र है और महर्षि दानंद सरस्वती जी उनके लेखक है, और उस महापुरुष का इस क्षेत्र में काफी एक सुना सुनाया सुनी सुनाई महिमा के कारण इतना दबदबा बना हुआ है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा है कि परमात्मा चीर नहीं बढ़ा सकता, ये सब झूठ है। परमात्मा नरसी जी की हुंडी नहीं झाल सकता, परमात्मा नरसी जी का भात नहीं भरा परमात्मा ने, ये सब बकवाद है। ऐसे जो कहते हैं वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं। और अब हम कहते हैं कि यहाँ कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं, अब यहाँ कहते हैं कि 20-20 साल का दमा ठीक हो जाता है, यहाँ हम कहते हैं हमारे भक्तजन के परमात्मा की रजा से कबीर परमेश्वर की कृपा से हाथ स्पर्श करते ही आंखें भी ठीक हो जाती हैं, दमे के रोग भी ठीक हो जाते हैं, कृपा परमेश्वर की है। लेकिन उस व्यर्थ शास्त्र के पढ़ने से, और वो काफी सदियों एक सदियों से चल रहा है, 150 वर्ष से उस ऐसे ज्ञान को सुन सुन कर पक गए कान, और दूसरी जो हम साधना करते थे उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए वो ज्ञान हमें काफी अच्छा लगने लगा था कि सचमुच ऐसा कुछ भगवान नहीं कर सकता, ना कर पा रहा है, और नहीं हमारे कोई विशेष ऐसी कृपा परमेश्वर की हो पा रही थी। तो हमने वो ज्ञान अच्छा लगने लगा, कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, भगवान कुछ नहीं कर सकता। फिर तो परमात्मा की चाह खत्म हो जाएगी और ये सारा जो है ना मानव समाज नास्तिक हो जाएगा अगर परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पड़े। अब जैसे द्रौपदी जी का चीर क्यों बढ़ा और अन्य बहन बेटियों की ना जाने कितना के समाचार पत्रों में हम सुनते हैं, उनकी मदद परमात्मा नहीं करता द्रौपदी की, क्योंकि यही बात है भक्त और अभक्त, यही अंतर है भक्त और अभक्त में, यही अंतर है पूर्ण परमात्मा यानी भक्ति के मार्ग की, संत और असंत की। एक समय की बात है, जैसा कि आपको भी बताया था कि पहले गुरु मर्यादा भक्ति मार्ग से ही प्रारंभ होती थी और सभी पुण्य आत्माओं के बचपन से ही जब बच्चा बोलने लग जाता था उनको परमात्मा का ही मार्ग प्रशस्त किया जाता था। पहले शिक्षा रोजी रोटी के लिए नहीं थी, केवल परमात्मा का मार्ग, परमात्मा के शास्त्रों को अध्ययन स्वाध्याय करने के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। द्रौपदी राजा द्रौपदी की पुत्री थी और बचपन से ही गुरु बना लिए जाते थे, गुरुदेव शिक्षा दिया करते थे बेटी बच्चों को, अपनों को, अपने शिष्यों को, शिष्याओं को, और धार्मिकता बच्चों में कूट कूट कर भर दी जाती थी। एक समय द्रौपदी जब तक कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, अपने पिता के घर पे रहती थी। राजा द्रौपदी ने गंगा के किनारे पर एक बहुत बड़ा घाट बना रखा था, जनाना घाट, जहां पर ये द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों के साथ जाया करती थी। अब परमात्मा कहते हैं, 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, अरना कुछ जो मार हो नरसिंह धर लो साजे। द्रौपदी कौन थी? ये शेरा वाली थी, आधी माया का अवतार थी। ये द्रौपदी क्यों बनी थी? ज्योति निरंजन काल ने द्रौपदी शेरा वाली को, दुर्गा को श्राप दिया था कि द्वापर युग में तो द्रौपदी होगी, तेरे 5 पति होंगे। और फिर मोटे दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि परमात्मा कबीर परमेश्वर ही की सब आत्माएं हैं, चाहे वो दुर्गा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, और चाहे हम आम जीव है, हम उस एक पिता की संतान है। उस परमात्मा के लिए चिंता का विषय होता है हमारे बचाव करने का, उसको मालूम होता है कि इसको कब आकर के क्या कष्ट होना है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा से संपर्क में नहीं आते तो किया हुआ ही कर्म हमें मालिक कबीर परमात्मा ही हम सबको देता है, और जब उसकी शरण में आ जाते हैं तो पाप का कर्म नहीं मिलेगा, पुण्य ही आपको प्राप्त होगा। ये याद रखना, ये नोट कर लेना इन बातों को। अब परमेश्वर ने देखा, क्योंकि जब प्रभु आते हैं उस समय लोग नहीं मानते उनको, सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा के बहुत कम ही अनुयायी बने थे। कलयुग में एक बैन उठा रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी एक बार शरण में विधि बता गए वो सारे पार होंगे। तो ये द्वापर की बात है। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म एक अंधे साधु का रूप बना के, और उस जनाना घाट के डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था, उस जनाना घाट से ज्यादा 2 फरलांग की दूरी पे, और स्नान करने वक्त से मुंह अंधेरे चला गया, सूर्य अस्त, सूर्य उदय होने से 2 घंटे पूर्व स्नान के लिए वहां उसमें दरिया में प्रवेश कर गए। केवल तन पर 1 लंगोट था, बाकी कपड़ा बाहर पटड़ी पर नहीं था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंची, सैकड़ों सहेलियों के साथ। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्य आत्मा होती है साधु को देखकर एकदम अट्रैक्शन होता है, खिंचाव बनता है। परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब, साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को ओत है जिनके पूर्ण भागे। कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आव यादे, लेखे में वो ये समय भाई बाकी का समय बाद। के साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। अब सत्संग में आते हो, यहां पर केवल परमात्मा की चर्चा होती है, और कोई स्थान आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जो परमात्मा की बिल्कुल कोरी चर्चा हो। चाहे कितने जाकर बैठती है, एक बार राम राम कर कहना बिरा के गोपोड़ पेल देंगे बैठ के। और यहां आगे ए भगवान आपस में बहन भाई, भाई भाई बहन बहन चर्चा करते हैं तो परमेश्वर की। कोई नया बहन भाई आता है तो पुराने भक्तजन अपना कति नोछावर हो जाते हैं, सोचे ना जाने के इसका किस किस प्रकार विश्वास दृढ़ कर दो इस प्यारी आत्मा का कि यहाँ भगवान आए हुए हैं, ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार है, ये सर्व सुखदायी है, सब दुखों का निवारण कर सकते हैं। और फिर सत्संग शुरू हो जाता है या फिर भगवान का भंडारा होता है। तो यहां जो आते हैं वो पूर्ण भागी प्राणी है, चाहे वो दुख में आ रहे हैं, चाहे किसी कष्ट के कारण यहां पर आए हैं, या किसी दोस्त बहन सहेली के कहने से वो आए हैं, किसी भी कारण से आए हैं, वो बहुत ही पुण्यात्मा प्राणी है। तो यहां जब साधु नजर आता है तो एकदम अट्रैक्शन होता है। अब वही आस्था हमारी अब भी थी, लेकिन अब संत नहीं रहे, अब तो बस काम चलाओ सरकार हो रही सारी, संत नहीं रहे। संत की वेशभूषा के अंदर असंतों की संख्या असंख्य हो चुकी है। उस समय क्या होता था कि भगवान से डरने वाले होते थे, अगर कोई ज्ञान होता तो वो बता देते, नहीं तो कह देते बच्चा मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अपना बस मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं अपना काम चला रहा हूं, मेरे पास और ज्ञान नहीं है। और अब किसी से बात कर ले ज्ञानी तक कोई कम को नहीं, अपने ज्ञान से ज्यादा किसी का मानता नहीं, चाहे कोई संत है चाहे कोई कुत्ता, किसी संत से किसी की पुस्तक उठा के देख ले, लेखन कार्य करने लगता है तो ना जाने क्या लिख देता है, और ज्ञान उसमें एक अन्य का को ना। आपने देखे होंगे राधा स्वामी की, है भगवान एक गधे पर ना चाल इतनी पुस्तक से नारी नारी कट्ठी कर लेना, सारी सारे नाम नारे नारे है, एक गधे पर नहीं चला हुआ, और एक अन्य का ज्ञान, एक नए पैसे का ज्ञान। और सत्यार प्रकाश आपको दिखा पेपरों में पढ़ रहे राज फिर दिखाऊंगा, ए भगवान इस तरह तो मेरे ख्याल में पहली का कहता है बढ़िया। और महर्षि को आगे इन ऊट पटांग कथाएं बना के अपने अपने सोच के व्यर्थ शास्त्र बना कर ये महर्षि की पदवी पा गए हमारे भोले भाले पूर्वजों के ऊपर। अब इनकी सब की जो है ना अब सफाई हो जाएगी थोड़े से दिन में, ये सब सामने आ जाएंगे, क्योंकि पहले सारे अशिक्षित थे अपने पूर्वज, और ये चातुर लोग गणे थे, शिक्षा संस्कृत पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था, दूसरा संस्कृत नहीं पढ़ सकता था, ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ सकते थे और विद्या नहीं ग्रहण कर सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए इनका दाव लगा रहा। अब बच्चे तो लेकर बूढ़े तक और नौजवान भाई बहन बेटी सब शिक्षित है, शास्त्र अपने पास है, अब ये सब ठीक हो जाएंगे और एक निर्मल ज्ञान उभर का आवेगा जो हमारे पवित्र वेदों में वर्णित है, उसी के आधार पर हमने साधना कर। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु सुबह सुबह एक संत नजर आया, एक बार मन में आया कि साधु से बात करें, फिर मन में आया कि साधु स्नान कर रहा तुम भी स्नान कर लो, फिर बैठ के काफी देर बात करेंगे संत से, प्रभु की चर्चा करेंगे। इस उद्देश्य से द्रौपदी स्नान करने के लिए घाट में स्नान करने लग गए, स्नान करी करते रहे, उछल कूद करते रहे, नहाए धोए काफी देर लगी, फिर कपड़े चेंज किए, जब बाहर आई तो फिर देखा कि साधु तो अभी पानी के अंदर ही है, वो अंधा महात्मा रूप में परमात्मा वहां प्रवेश थे। देखा कि अभी वो पानी में प्रवेश है लेकिन महात्मा स्नान नहीं कर रहा, वो कोई वस्तु ढूंढ रहा है, क्या हुआ या लीला मालिक की, अब वो वैसे तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, वो सतगुरु कबीर साहब थे। अब हम आपको समझाने के लिए एक साधु मानकर चलेंगे, वो अंधा महात्मा थे और वस्तु उनके पास था नहीं और वो लंगोट भी उनका ऐसे नहाते समय वो लंगोट भी टूट गया, अर्थात वो संत नीवस्त्र हो गए और शर्म के मारे के आसपास लड़कियां नहा रही है, शर्म के मारे लीला करते हुए और सीने से ऊपर तक जल में पहुंच गए और ऐसे हाथ मार रहे हैं, ऐसे हाथ मार रहे। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा, कोई वस्तु ढूंढ रहा है। अब उस लड़की ने अपने देव दृष्टि से देखा कि महात्मा के पास वस्त्र नहीं है, पटरी पर भी वस्त्र नहीं है और महात्मा नी वस्त्र हो गया है, ये शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा, इसलिए ये गर्दन पानी के अंदर पहुंच गया है। अब द्रौपदी ने सोचा कि ये महात्मा सारा दिन बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अंधा है, हाथ ऐसे मारा ये तो अंधा है और सारा दिन ये पानी में गलेगा और रात को भी अगर निकल भी गया तो इसको वस्त्र नहीं मिलेगा। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में से राजा की लड़की कितने सुंदर कपड़े पहनती होगी, विचार करना। हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने से अच्छे कप वस्त्र पहनाने की चेष्टा करते हैं। राजा की लड़की और कितनी कीमती साड़ी यानी वस्त्र पहनती होगी। उस लड़की ने अपनी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक बिलहत का कपड़ा, लगभग 8-9 इंच 10 इंच का कपड़ा और ऐसे फाड़ा और दरिया में बहा दिया कि हो सकता है महात्मा के हाथ लग जा और ये अपना पर्दे पर बांध के बाहर आ जावे। अब वो नहीं हाथ लगा, दूसरा फिर फाड़ा, फिर डाल दिया, वो भी हाथ नहीं लगा, तीसरा फिर एक हिसाब, तीसरा फिर फाड़ा, वो डाल दिया, नहीं हाथ लगा। 7-8 ऐसा लिखा परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास साहेब ने, ये खराब हो गया, चल नहीं रहा। सात ऐसा लिखा कि 7-8 कोपीन बहाई, एक कपड़ा लगाओ एक बिलहत यानी 9 इंच और 2 कितना हो गया और 4 कितना हो गया, 8 कितना, आधे से ज्यादा साड़ी फाड़ दी उस लड़की ने। किसके लिए? एक गैर व्यक्ति के लिए, एक दूसरे व्यक्ति के लिए। विचार कर कीजिए कि जैसे आपका बेटा या बेटी छोटी सी आपके साथ है और उसके कोई चोट लग जाए गुट्ठे के और उसको कपड़ा बांधने के लिए हम इधर उधर कपड़े ढूंढा कर रहे हैं, अपना नहीं फाड़ सकते जल्दी से, और वहां उस लड़की ने एक महापुरुष के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए एक अपनी कीमती साड़ी और आओ देखा ना ताओ देखा और फाड़ फाड़ कर डाल दी, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगा। अब लड़की निकट इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि महात्मा नी वस्त्र है। अब उस लड़की ने विचार किया कि तेरे पाप के तुल है और यदि इसका ये कपड़ा नहीं मिला तो मेरा जीवन जो है ना साधु भक्त आत्मा के बस की बात नहीं होती, वो अपने शुभ कर्म से पीछे नहीं हटा करता। लड़की ने, द्रौपदी ने सोचा कि भी मेरे बाप के तुल है और इसमें शर्म की क्या बात है। एक लंबी लकड़ी उठाई, एक लंबी लकड़ी उठाई और उसके एक और कपड़ा पाड़ के अपने साड़ी माते उसके लपेटा दे के और ऐसे उसके जहां महात्मा जी नहा रहा था ऐसे हाथ मार रहा था उस हाथ के सामने कर दी और महात्मा का वो कपड़ा हाथ लग गया। हाथ कर लग गया तो एकदम पकड़ लिया उसने, हे भगवान शुक्र मनाया, बड़ी दया करी परमात्मा आपने, ऐसे लड़की को सुनाकर कह रहा है कि बहुत दया करी मेरे प्रभु, ओहो बड़ा कपड़ा मिला आपने, बहुत दया करी, हे मालिक कहां से भेज दिया, जब फिर उसको देखा, ओहो ये तो किसी बहन बेटी का कपड़ा है, साड़ी है बहुत सुंदर साड़ी, बहुत अच्छी कीमती साड़ी है, बहन ने ताजी फाड़ी है। हे भगवान, आज जिस बेटी ने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है, भगवान उसकी इज्जत रखे और उसने गणाए दे। कहते साधु बोले सहज सुभा जो चाहे सो कर दे। स्वाभाविक आशीर्वाद दिया परमात्मा ने अपनी उस प्यारी आत्मा के लिए, आप लीला कर दी। अब द्रौपदी तो आगी करने, द्रौपदी का याद भी को ना कि ये तूने कोई दान किया था। अब बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। वहां द्रौपदी का कोई स्वार्थ नहीं था, वहां ये स्वार्थ नहीं था कि एक पाठ करा दो मेरे न्यू हो जावे, नहीं, वहां परमार्थ था कि ये मनुष्य जीवन का एक भक्त का प्रथम कर्तव्य बनता है इस ऐसा है कैसा है करना। अब द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो जाती है, उधर दुर्योधन और दुशासन दुर्योधन से कहा सुनी द्रौपदी की हो जाती है। पांडवों और कौरवों ने जुआ खेल करके, कौरवों ने दुर्योधन ने पांडवों से राज भी जीत लिया और द्रौपदी को भी दाव पर लगवा दिया। द्रौपदी को जब दाव पर लगा दिया तो दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि ला उस द्रौपदी को पकड़ कर और आज सभा में उसको नंगी करूंगा, उसने मुझे ताना मारा था कि अंधों के अंधे होते हैं, आज उसको यहां दिखाएंगे हम अंधे हैं या आंखों वाले हैं। अब द्रौपदी को पकड़ के वहां ले आए। भीष्म पितामह है द्रोणाचार्य और करण जैसे योद्धा विराजमान थे, द्रौपदी को विश्वास नहीं हुआ कि तेरी साड़ी उतारेंगे, क्योंकि बांदी ने कह दिया था कि द्रौपदी आज आपको नग्न करेगा दुर्योधन, सभा के अंदर तुझे जुए में जीत लिया है। लेकिन द्रौपदी के मन में यह बात नहीं समाई थी कि ऐसी सभा में और कभी लड़कियों औरत को अनंगा कर सकते हैं, जहां पर भीष्म पितामह जैसे महापुरुष विराजमान है, करण जैसे बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे बैठे हैं और मेरे पांचों पांडव पति बैठे, अगर उनको वहां कोई मेरे तरफ उंगली उठाएंगे तो वहां उनका बहुत ही कुछ बुरा हाल कर देंगे। वहां जाकर क्या देखा कि दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इसका चीरहरण करो, आज इसको निवस्त्र कर दे दुर्योधन और दुशासन, आज इसको दिखाएंगे हम अंधे हैं या आंखों वाले, हम तो अंधे हमें दिखाई नहीं देगा और इसको आज निवस्त्र करेंगे। दुशासन खड़ा हुआ। अब द्रौपदी ने सोचा था कि ये होने नहीं देगी, तेरे पांचों पांडव बैठे हैं, पति बैठे हैं और साथ में ये महापुरुष विराजमान है, लेकिन वो पांचों तो जुए में हार चुके थे, वो तो बंध गए थे वचन में, और वो तीनों महापुरुष भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये उस मलिन अन्न को खाके बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दुर्योधन के अन्न को खाके उन्होंने भी सभा में कुछ नहीं कहा, बोले भी कोई ना। दूसरा सन नंगी करने लगा, चीर उतारने लगा और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की तरफ याचना करती है कि आप बैठे बैठे देख रहे हो और मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कह रहे, लेकिन नीची गर्दन कर ली। उधर से देखा कि वो पांचों पांडव भी नहीं टस से मस हो रहे हैं, क्योंकि वो जबान से बद्ध थे, वो जबान बद्ध हो चुके थे, वचन बद्ध हो चुके थे, वो हार चुके थे। या परमात्मा कहते हैं कि बंदे से बंदा मिले वो छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की पलम देत छुटाई। अब देखो जब तक ये प्राणी अपनी हिम्मत और अपने रिश्तेदारों पे और अपने ही इस संसारिक व्यवस्थाओं को अपना मानकर इसको प्रासरित है, तब तक परमात्मा मदद नहीं करता। चाहे वो उसी का किया हुआ कर्म भी देना होता है, वो तभी देता है जब उसको विशेष ऐड जब दी जाती है, तो विशेष कसक से और अलग से याचना केवल ईश्वर अधीन ईश्वर आश्रित होकर के करनी पड़ती है। ये भी बहुत लंबी कहानी आपको बताएंगे, सारी धीरे धीरे समझ में आएगी। अब द्रौपदी ने देखा कि यह कोई किसी का नहीं, ना ये पति तेरे हैं, ना ये भीष्म पितामह जैसे महापुरुष तेरे हैं, केवल एक परमात्मा तेरा है। अब संसारिक जो आश्रय थे उनसे मन हटा के परम पिता पर को सच्चे दिल से याद किया, परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई नहीं। और वास्तव में है भी ऐसा ही, इस जीव का अगर साथी है, सखा है, तो परमात्मा ही है, बाकी नहीं है। बाकी ठीक है, माँ बाप का जैसे संपर्क है, अपने पुत्र पुत्री में बहुत प्यार होता है, लेकिन पिता स्वयं ऐसा है, बच्चे की टांग टूटगी तो टूटगी, बच्चे की मृत्यु होगी तो होगी, पिता रो रहा है, पुत्र मर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकता है वो कोई और शक्ति है, उसको हम भूल जाते हैं। और जब हम सबको भूलकर उसको याद करते हैं तो हमारे को विशेष एड मिलती है।